संबंध अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ बताया और तीसरे चौथे श्लोकों में निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही। अब दोनों प्रकार की उपासनाओं के अवांतर भेद तथा कठिनाई एवं सुगमता का वर्णन आगे के तीन श्लोकों में करते हैं। क्लेशो दिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। व्याख्या क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, इस विशेषण से यहाँ उन साधकों की बात कही गई है जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं पर उनका चित्त निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। तत्व में आविष्ट होने के लिए साधक में तीन बातों की आवश्यकता होती है, रुचि, विश्वास और योग्यता। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है और वे विश्वास पूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण जिनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं होता है, ऐसे साधकों के लिए यहाँ अव्यक्ता सक्त चेतसाम पद का प्रयोग हुआ है। भगवान ने छठे अध्याय के 27वें 28वें श्लोकों में बताया है कि ब्रह्म भूत अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित साधक को सुख पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परंतु यहाँ इस श्लोक में क्लेश अधिकतर है पदों से ये स्पष्ट किया है कि इन साधकों का चित्त ब्रह्म भूत साधकों की तरह निर्गुण तत्व में सर्वथा तल्लीन नहीं हो पाया है, अतः उन्हें अव्यक्त में आविष्ट चित्त वाला न कहकर आसक्त चित्त वाला कहा है। तात्पर्य यह है कि इन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुणोपासना को ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, जबकि आसक्ति देह में ही हुआ करती है अव्यक्त में नहीं। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्तम पद प्रकृति के अर्थ में आया है तथा और भी कई जगह वह प्रकृति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, परंतु यह अव्यक्ता सक्त चेतसाम पद में अव्यक्त का अर्थ प्रकृति नहीं प्रत्युत निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कारण यह है कि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने त्वाम पद से सगुण साकार स्वरूप के और अव्यक्तम पद से निर्गुण निराकार स्वरूप के विषय में ही प्रश्न किया है। उपासना का विषय भी परमात्मा ही है न कि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति का कार्य तो त्याज्य है। इसलिए उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अव्यक्त पद का निर्गुण निराकार स्वरूप के अर्थ में ही प्रयोग किया है। अव्यक्त है ये व्यक्त रूप के विपरीत है, अतः यहाँ प्रकृति का प्रसंग न होने के कारण अव्यक्त पद का अर्थ प्रकृति नहीं लिया जा सकता। नवे अध्याय के चौथे श्लोक में अव्यक्त मूर्तिना पद सगुण निराकार स्वरूप के लिए आया है। ऐसी दशा में यह प्रश्न हो सकता है कि यहाँ भी अव्यक्ता सक्त चेत साम पद का अर्थ सगुण निराकार में आसक्त चित्त वाले पुरुष ही क्यों न लिए जाए, परंतु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में त्वाम पद सगुण साकार के लिए और अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए आया है। ब्रह्म क्या है, अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात वहाँ भी अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए आया है। इसलिए अर्जुन ने अव्यक्तम अक्षरम पदों से जिस निर्गुण ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया था, उसी के उत्तर में यहाँ अव्यक्त पद से निर्गुण निराकार ब्रह्म ही लेना चाहिए, सगुण निराकार नहीं। क्लेशोधिक तरह पद का भाव यह है कि जिन साधकों का चित्त निर्गुण तत्व में तल्लीन नहीं होता है, ऐसे निर्गुण उपासकों को देहाभिमान के कारण अपनी साधना में विशेष कष्ट अर्थात कठिनाई होती है। साधक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे साधक हैं जो सत्संग श्रवण और शास्त्राध्ययन के फल स्वरूप साधनों में प्रवृत्त होते हैं, इनको अपने साधन में अधिक क्लेश होता है। दूसरे वे साधक हैं जिनकी साधन में स्वाभाविक रुचि तथा संसार से स्वाभाविक वैराग्य होता है, इनको अपने साधन में कम क्लेश होता है। यहाँ ये शंका हो सकती है कि साधक दो ही प्रकार के क्यों होते हैं। इसका समाधान यह है कि गीता में योग भ्रष्ट पुरुष की गति के वर्णन में भगवान ने दो ही गतियों का वर्णन किया है। पहली, कुछ योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोकों में जाते हैं और वहाँ भोग भोग कर लौटने पर शुद्ध आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं और पुनः साधन रत होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। गीता छठे अध्याय का 41वां, 44वां और 45वां श्लोक। दूसरी गति, कुछ योग भ्रष्ट पुरुष सीधे ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं और फिर साधन करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे कुल में जन्म होना दुर्लभतर है। गीता छठे अध्याय का 42वां, 43वां श्लोक। गौण रूप से इस पद का भाव यह है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक के सभी निर्गुण उपासकों को सगुण उपासकों से अधिक कठिनाई होती है। विशेष बात, अब सगुण उपासना की सुगमताओं और निर्गुण उपासना की कठिनताओं का विवेचन किया जाता है। सगुण उपासना की सुगमताएं, सगुण उपासना में उपास्य तत्व के सगुण साकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए भगवान के स्वरूप नाम लीला कथा आदि का आधार रहता है। भगवान के परायण होने से उनके मन इंद्रियां भगवान के स्वरूप एवं लीलाओं के चिंतन कथा श्रवण भगवत सेवा और पूजन में अपेक्षाकृत सरलता से लग जाते हैं। गीता के 8वें अध्याय में 14वां श्लोक। इसलिए उनके द्वारा सांसारिक विषय चिंतन की संभावना कम रहती है। इसके विपरीत निर्गुण उपासना में उपास्य तत्व के निर्गुण निराकार होने से साधक के मन इंद्रियों के लिए कोई आधार नहीं रहता। आधार न होने से तथा वैराग्य की कमी के कारण इंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन की अधिक संभावना रहती है। सगुण उपासना की सुगमता का दूसरा कारण, सांसारिक आसक्ति ही साधन में क्लेश देती है, परंतु सगुणोपासक इसको दूर करने के लिए भगवान के ही आश्रित रहता है। वह अपने में भगवान का ही बल मानता है। बिल्ली का बच्चा जैसे माँ पर निर्भर रहता है, ऐसे ही वह साधक भी भगवान पर निर्भर रहता है। भगवान ही उसकी साल संभाल करते हैं। 9 का 22 मानस में भी कहा है, सुनु मुनि तोई कहूं सहरोसा, भजई जित मोही तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। अतः उसकी सांसारिक आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। इसके विपरीत निर्गुण उपासना की कठिनता, देह में जितनी अधिक आसक्ति होती है साधन में उतना ही अधिक क्लेश मालूम देता है। निर्गुणोपासक उसे विवेक के द्वारा हटाने की चेष्टा करता है। विवेक का आश्रय लेकर साधन करते हुए वह अपने ही साधन बल को महत्व देता है। बंदरे का छोटा बच्चा जैसे अपने बल पर निर्भर होने से अपनी माँ को पकड़े रहता है और अपनी पकड़ से भी अपनी रक्षा मानता है, ऐसे ही यह साधक अपने साधन के बल पर अपनी उन्नति मानता है। 18 का 51 से 53। इसलिए रामचरितमानस में भगवान ने इसको अपने समझदार पुत्र की उपमा दी है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सगुण उपासना की तीसरी सुगमता, ऐसे उपासकों के लिए गीता में भगवान ने नचिरात आदि पदों से शीघ्र ही अपनी प्राप्ति बताई है। 12 का 7वां इधर निर्गुण उपासना की कठिनता, ज्ञानियों के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रसंग में 4th अध्याय के 39वें श्लोक में अचिरेण पद तत्व ज्ञान के अनंतर शांति की प्राप्ति के लिए आया है, न कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए। सगुण उपासना की चौथी सुगमता, सगुण उपासकों के अज्ञान रूप अंधकार को भगवान ही मिटा देते हैं। 10वें का 12वां इसके विपरीत निर्गुण उपासना की कठिनता यह है कि निर्गुण उपासक तत्व की प्राप्ति स्वयं करते हैं। 13वें अध्याय का 34वां श्लोक सगुण उपासना की 5वीं सुगमता यह है कि उनका उद्धार भगवान करते हैं। 12वें का 7वां इसके विपरीत निर्गुण उपासना की कठिनता यह है कि ये अपना उद्धार स्वयं करते हैं। 5वें का 24वां सगुण उपासकों की 6ठी सुगमता यह है कि ऐसे उपासकों में यदि कोई सूक्ष्म दोष रह जाए तो भगवान पर निर्भर होने से सर्वज्ञ भगवान कृपा करके उसको दूर कर देते हैं। 18 का 58वां और 66वां जबकि निर्गुण निराकार की कठिनता यह है कि उन उपासकों में यदि कोई कमी रह जाए तो उस कमी का अनुभव उनको विलंब से होता है और कमी को ठीक ठीक पहचानने में भी कठिनता होती है। हाँ, कमी को ठीक ठीक पहचान लेने पर ये भी उसे दूर कर सकते हैं। सगुण उपासना की 7वीं सुगमता यह है कि ऐसे उपासकों की उपासना भगवान की ही उपासना है। भगवान सदा सर्वदा परिपूर्ण है ही, अतः भगवान की पूर्णता में किंचिन मात्र भी संदेह न रहने के कारण उनमें सुगमता से श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा होने से वे नित्य निरंतर भगवत परायण हो जाते हैं। अतः भगवान ही उन उपासकों को बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। दसवें का दसवां, जबकि निर्गुण उपासकों की सातवीं कठिनाई यह है, चौथे अध्याय के 34वें और 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान योगियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की उपासना की आज्ञा दी है। अतः निर्गुण उपासना में गुरु की आवश्यकता भी है, किंतु गुरु की पूर्णता का निश्चित पता न होने पर अथवा गुरु के पूर्ण न होने पर स्थिर श्रद्धा होने में कठिनाई आती है तथा साधन की सफलता में भी विलंब की संभावना रहती है। सगुण उपासना की आठवीं सुगमता, ऐसे साधक भगवान को परम कृपालु मानते हैं, अतः उनकी कृपा के आश्रय से वे सब कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। यही कारण है कि उनका साधन सुगम हो जाता है और भगवत कृपा के बल से वे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। गीता 18वें अध्याय के 56वें से 58वें श्लोक तक। इसके विपरीत निर्गुण उपासकों की आठवीं कठिनता यह है कि ऐसे उपासक उपास्य तत्व को निर्गुण, निराकार और उदासीन मानते हैं, अतः उन्हें भगवान की कृपा का वैसा अनुभव नहीं होता। वे तत्व प्राप्ति में आने वाले विघ्नों को अपनी साधना के बल पर ही दूर करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। फलस्वरूप तत्व की प्राप्ति में भी उन्हें विलंब हो सकता है। सगुण उपासना के नवमी सुगमता, मनुष्य में कर्म करने का अभ्यास तो रहता ही है, जैसा कि तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है। इसलिए भक्त को अपने कर्म भगवान के प्रति करने में केवल भाव ही बदलना पड़ता है, कर्म तो वे ही करते हैं। अतः भगवान के लिए कर्म करने से भक्त कर्म बंधन से सुगम पूर्वक मुक्त हो जाता है। गीता 18 का 46वां, निर्गुण उपासक की कठिनता में बोल रहे हैं, नवी कठिनता। ज्ञान योगी अपनी क्रियाओं को सिद्धांततः प्रकृति के अर्पण करता है, किंतु पूर्ण विवेक जागृत होने पर ही उसकी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो सकती है। यदि विवेक की किंचन मात्र भी कमी रही तो प्रकृति के अर्पण नहीं होगी और साधक कर्तृत्वाभिमान रहने से कर्म बंधन में बन जाएगा। सगुण उपासना में दसवीं सुगमता यह है कि हृदय में पदार्थों का आदर रहते हुए भी यदि वे प्राणियों की सेवा में लग जाते हैं तो उन्हें पदार्थों का त्याग करने में कठिनाई नहीं होती। सत्पात्रों के लिए पदार्थों के त्याग में तो और भी सुगमता है, फिर भगवान के लिए तो पदार्थों का त्याग बहुत ही सुगमता से हो सकता है। जबकि निर्गुण निराकार में कठिनता यह है कि जब तक साधक के चित्त में पदार्थों का किंचन मात्र भी आदर अथवा अपने कहलाने वाले शरीर और नाम में अहंता ममता है, तब तक उसके लिए पदार्थों को मायामय समझकर उनका त्याग करना कठिन होता है। सगुण उपासना में 11वीं सुगमता यह है कि साधन में विवेक और वैराग्य की उतनी आवश्यकता नहीं है जितने प्रेम और विश्वास की है। जैसे कौरवों के प्रति द्वेष वृत्ति रहते हुए भी द्रौपदी के पुकारने मात्र से भगवान प्रकट हो जाते थे, क्योंकि वह भगवान को अपना मानती थी। भगवान तो अपने साथ भक्त के प्रेम और विश्वास को ही देखते हैं, उसके दोषों को नहीं देखते। भगवान के साथ अपनापन का संबंध जोड़ना उतना कठिन नहीं है जितना कि पात्र बनना कठिन है, और भगवान की ओर से अपनापन स्वतः सिद्ध है, इसलिए सगुण उपासना में सुगमता रहती है। जबकि निर्गुण उपासना में 11वीं कठिनता यह है कि यह साधक पात्र बनने पर ही तत्व को प्राप्त कर सकेगा। पात्र बनने के लिए विवेक और तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होगी, जिनको आसक्ति रहते हुए प्राप्त करना कठिन है। ये दोनों की तुलना करने के पश्चात अब उस श्लोक में बचे हुए अंश की व्याख्या हो रही है। अव्यक्ता गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। देही, देह भृत आदि पदों का अर्थ साधारणतया देहधारी पुरुष लिया जाता है। प्रसंगानुसार इनका अर्थ जीव और आत्मा भी लिया जाता है। यहाँ देहवद्भी पद का अर्थ देहाभिमानी मनुष्य लेना चाहिए, क्योंकि निर्गुण उपासकों के लिए इसी श्लोक के पूर्वार्ध में अव्यक्तासक्त चेतसाम पद आया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर उनका चित्त देहाभिमान के कारण निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। देहाभिमान के कारण ही उन्हें साधन में अधिक क्लेश होता है। निर्गुण उपासना में देहाभिमान ही मुख्य बाधा है। कहा भी है कि देहाभिमानिनी सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति। इस बाधा की ओर ध्यान दिलाने के लिए भगवान ने देहवद भी पद दिया है। इस देहाभिमान को दूर करने के लिए ही अर्जुन के बिना पूछे ही भगवान ने 13वां और 14वां अध्याय कहा है। उनमें भी 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक देहाभिमान मिटाने के लिए ही कहा गया है। ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप की प्राप्ति को यहाँ अव्यक्ता गति कहा गया है। साधारण मनुष्यों की स्थिति व्यक्त अर्थात देह में होती है, इसलिए उन्हें अव्यक्त में स्थित होने में कठिनाई का अनुभव होता है। यदि साधक अपने को देह वाला न माने तो उसकी अव्यक्त में सुगमता और शीघ्रता पूर्वक स्थिति हो सकती है। परिशिष्ट भाव, निर्गुणोपासना में जो देह सहित है वह उपासक है, और जो देह रहित है वह उपास्य है। यहाँ उपासक जीव और उपास्य ब्रह्म है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में खास बाधक है। इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुण उपासना की सिद्धि कठिनता से तथा देरी से होती है, परंतु सगुणोपासना में भगवान की विमुखता बाधक है, देहाभिमान बाधक नहीं है। इसलिए सगुणोपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाता है। साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। 12वें का 7वां और 8वें का 14वां, यह सगुणोपासना की विलक्षणता है। सगुणोपासना में भक्त जगत को मिथ्या मानकर उसके त्याग पर जोर नहीं देता, क्योंकि उसकी दृष्टि में जड़ चेतन सत असत सब कुछ भगवान ही है। सद सत चाहम अर्जुन 9:19। इसलिए सगुण की उपासना समग्र की उपासना है। गीता ने सगुण को समग्र माना है, और ब्रह्म जीव कर्म अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ इन सब को समग्र भगवान के अंतर्गत माना है। 7वें अध्याय का 29:30। इसलिए गीता को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गुणोपासना समग्र भगवान के एक अंग की उपासना है और सगुणोपासना स्वयं समग्र भगवान की उपासना है। त्वाम परियुपासते माम ध्यायन्त उपासते, 12वें अध्याय का 6। जो समग्र भगवान के एक अंग की उपासना करता है उसको भी अंत में समग्र की प्राप्ति होती है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, 12 का 4। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, 18 का 55। अतः जिसको निर्गुण अच्छा लगता है वो निर्गुण की उपासना करे, पर उसको निर्गुण का आग्रह रखकर सगुण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सगुण का तिरस्कार, निंदा, खंडन करना निर्गुणोपासक के लिए बहुत घातक है, अर्थात उसकी साधना के सिद्ध होने में बहुत बाधा होगी। कारण कि अपरा प्रकृति भगवान की है, अतः उसकी निंदा करने से वे भगवान की निंदा होती है। गुणों का खंडन करने से गुणों की सत्ता आ जाती है जो बाधक होती है, क्योंकि सत्ता माने बिना साधक निराकरण किसका करेगा। अतः साधक यदि दूसरे की निंदा तिरस्कार न करके तत्परता पूर्वक अपने साधन में लगा रहे तो आगे चलकर सभी साधक एक हो जाते हैं, क्योंकि तत्व एक ही है। सगुण की उपेक्षा करने से साधक मुक्त तो हो सकता है पर मतभेद नहीं मिट सकता, परंतु सगुण की उपेक्षा न रहने से मतभेद भी नहीं रहता और साधक